प्रातः क्लास चल रहा था 4/11/1966 शुक्रवार को चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी देवताएं जिनकी पूजा करते हैं उनको देवता कौन बनाते हैं। यानी मनुष्य को देवता कौन बनाते हैं, नरको नारायण भगवान बनाते हैं ना। तो जो बनाने वाला है उनको याद करना चाहिए। परंतु भक्ति मार्ग जो है ड्रामा के अनुसार है, वो भक्ति मार्ग चलना ही जरूर है। नहीं तो विवेक कहता है कि एक ही सदगति दाता है, तो पूजा भी तो एक की होनी चाहिए ना। कौन है सदगति दाता? सबका सदगति दाता एक। सद्गुरु निराकार, निरहंकार, अकाल मूर्त, कैसी मूर्त? ऐसी मूर्त जिसको काल खा नहीं सकता, अकाल मूर्त। लक्ष्मी नारायण तो अभी तमो प्रधान है, सतो प्रधान थे सतयुग में, अभी तमो प्रधान है। अभी वो तमो प्रधान सतो प्रधान बने कैसे? देवी देवताएं जो भी थे सतयुग में सतो प्रधान थे। जो देवी देवताएं भी 84 जन्म भोग करके तमो प्रधान बने, तो कोई भी किसको भी मालूम नहीं है इन बातों का। कि वो सतयुग के लक्ष्मी नारायण, त्रेता के राम सीता, जो 16 कला संपूर्ण 14 कला संपूर्ण माने जाते हैं, और कलयुग के अंत में कलाहीन बन जाते हैं, वो 16 कला संपूर्ण श्री नारायण और त्रेता में 14 कला श्री राम कैसे बनते हैं? ये बातें तो बाप आकर के बताते हैं। कौन सा बाप? सभी आत्माओं का बाप आकर के बताते हैं। कहां से आकर के बताते हैं? आत्मलोक से आते हैं और पांच तत्वों की, पंचभूतों की दुनिया में आते हैं। इस तमो प्रधान कलयुगी सृष्टि में आते हैं। वो आकर के बताते हैं, परंतु जो आते हैं वो तो निराकार है, उनको तो कोई शरीर का आकार ही नहीं, शरीर का जन्म ही नहीं लेते। फिर वो आकर के बताते कैसे हैं? मुख बिगड़ तो बता न सके, तो जरूर कोई मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं। कैसा मुकर्रर? इस सृष्टि पर सदा कायम रहने वाला, कौन है सृष्टि पर सदा कायम रहने वाला? शास्त्रों में कौन गाया हुआ है? कोई है जो शास्त्रों में गाया हुआ है, जो किसी से जन्म नहीं लेता, जिसका कोई बाप नहीं है और जिसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती? है तो ये संगम युगी शूटिंग की बात। इस बात को भी बताने वाला वो बेहद का बाप है। सभी आत्माओं का बाप, बेहद के मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के बताता है। जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, तामसी बन जाता है, तो तामसी को सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। एक का मतलब वो निराकार ज्योति बिंदु नहीं, वो कैसे पहचान में आएगा कि वो एक कौन है? बिंदु बिंदु आत्माओं के बीच वो सुप्रीम ज्योति बिंदु कैसे पहचाना जाए? तब ही पहचाना जा सकता है जब कोई साकारी मनुष्य में प्रवेश करे, ज्ञान सुनाए, आत्मा का ज्ञान, सुप्रीम सोल का ज्ञान अर्थात अपना ज्ञान इस षष्ठी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले हीरो पाठधारी आत्म का ज्ञान, सारे षष्ठी चक्र का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना भी। मतलब पहले मनुष्यों की बुद्धि में ज्ञान आता है, बाद में ज्ञानदाता आता है, क्योंकि वो ज्ञानदाता स्वयं आ करके अपना परिचय देता है। उसका परिचय कोई भी नहीं जान सकता। और दो बेहद के बाप इकट्ठे होते हैं, आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के बाप में आता है, आत्माएं दो लेकिन व्यक्तित्व एक, पर्सनालिटी एक, तब एक बाप कहा जाता है। जो बाप भी है, सदगुरु भी है। सदगुरु माने सच्चा गुरु, और सच्चा झूठा कहाँ साबित होगा? सत्य धर्म में साबित किया जाएगा। अरे सत्य धाम में तो सत्य ही सत्ता आत्मा है। सत्ता आत्माओं का कभी विनाश होता ही नहीं। सत्य आत्मा सदैव कायम रहती है। तो वहां सत्य धाम में, जहाँ असत्य की कोई बात ही नहीं है, उसको टैली किए कैसे जा सकता है? इसलिए वो सत्य बाप सभी सत्य आत्माओं का बाप सतगुरु के रूप में साकार मनुष्य के तन में आता है। जो सतगुरु कहा जाता है, टैली कर सकते हैं कि एक ही सतगुरु निराकार है, व्यक्तित्व रूप में है, साकार है, बाकी सब गुरु कैसे हो गए? एक ही सत्य तो बाकी गुरु झूठे हो गए। उन झूठे गुरुओं से सदगुरु टैली किया जाता है। सिख लोग गाते हैं, एक सदगुरु निराकार, एक ओंकार निराकार, क्योंकि एक ओंग शब्द भी है, शब्द ही है जो तीन अक्षरों से मिलकर के बनता है, आ ओ म ओम। ये तीन अक्षर आत्मा के तीन कार्यों को बताता है। हर आत्मा अपने अंदर दिव्य गुणों की स्थापना करती है। हर आत्मा दुर्गुणों का विनाश करती है, और वही आत्मा सद्गुणों की लंबे समय तक पालना करती है। ऐसे ही आत्माओं का बाप भी है, जो इस सृष्टि पर आकर के त्रिमूर्ति के रूप में प्रत्यक्ष होता है, ब्रह्मा की मूर्ति, शंकर की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, ब्रह्मा द्वारा श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाली देवताई सृष्टि की स्थापना करता है। शंकर द्वारा विकारी ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश करता है। श्रेष्ठ सूर्यवंशी अव्वल नंबर के जो ब्राह्मण रह जाते हैं उनके द्वारा सूर्यवंशी नर से नारायण बनने वाले के राज्य की राजधानी की स्थापना करते हैं। पालना करता है, शंकर की तीसरी मूर्ति के द्वारा विनाश, दुष्ट ब्राह्मणों का विनाश, जो ब्राह्मण पवित्रता का पालन ही नहीं करते, पवित्रता के पालन में कुछ न कुछ जानबूझ करके कमी रह जाती है। इसलिए नौ कुरियों के ब्राह्मण गाए जाते हैं भक्ति मार्ग में। जैसे भगवान के ऊपर आस्था रखने वाले आस्तिक धर्म नौ हैं, ऐसे ही भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में तो सारी सृष्टि से चुनी हुई आत्माओं को ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं और उस ब्रह्मा सृष्टि की बड़ी माँ की गोद में सभी छोटे बड़े ब्राह्मण सभी प्रकार के गोद में खेलते हैं। परंतु जो कहा जाता है छोटा सो खोटा, जितना छोटी कुरी के ब्राह्मण उतना खोटे कर्म करने वाले। तो उन नौ प्रकार की कुरियों के ब्राह्मणों में से जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं उनकी ब्रह्मा नामधारियों में से जो परम ब्रह्म है उसके द्वारा स्थापना होती है, राजधानी की स्थापना, और विष्णु द्वारा पालना। विष्णु कोई चार हाथों का व्यक्ति नहीं होता है, चार भुजाओं रूपी आत्माएं इस सृष्टि की श्रेष्ठ आत्माएं। संस्कारों से स्वभाव से मिलकर के एक हो जाती है, उन्हीं को विष्णु का रूप कहा जाता है। अर्थात नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण और नर से पहले प्रिंस फिर बाद में लक्ष्मी नारायण बनने वाले सत्युगी नारायण, वो चारों ही प्रकार की आत्माओं का कॉम्बिनेशन विष्णु कहा जाता है। उनके लिए बोला कि बाप आकर के बताते हैं, देखो तुम बच्चे, कोई एक के लिए नहीं कहा, तुम बच्चे माना अनेक बच्चे हैं या एक है, और उन अनेक बच्चों में तुम जिनको कहा जाता है वो सन्मुख बैठने वाले होते हैं या परोक्ष में सन्मुख बैठने वाले, तुम बच्चे जो थे, क्या थे, सृष्टि के आदि में सतो प्रधान थे, एकदम सृष्टि के आदि में कौन सतो प्रधान थे, उन बच्चों को सन्मुख देख करके या इमर्ज करके बेहद के बाप बोलते हैं कि तुम बच्चे जो सतो प्रधान थे, कौन थे, हैं संगमयुगी लक्ष्मी नारायण और उनमें प्रवेश करने वाली आत्माएं सचयुगी लक्ष्मी नारायण, जो संगम में बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, तो चारों ही लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं जो इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होने वाले सदगुरु से सत बाप से सुप्रीम बाप से सत टीचर सुप्रीम टीचर से वर्षा पा प्राप्त करती हैं, वो 84 जन्म भोग करके अभी तमो प्रधान बने, विष्णु की सहयोगी रूपी चार भुजाओं की तरफ इशारा किया, अभी तमो प्रधान बने, अभी माने कभी समय की तरफ इशारा किया, अभी माने हैं संगम युग में, अभी तमो प्रधान से तुमको सतो प्रधान कौन बनावे, कौन बनावे हैं, सुप्रीम बाप, आत्माओं का बाप है, जो आत्माओं का बाप निराकार है वो बच्चों को परिचय देकर के आत्मा का जन्म देगा या साकार मनुष्य का जन्म देगा, आत्मा की पहचान देगा कि साकार जन्म देगा, आत्मा की पहचान देगा, क्यों, क्योंकि वो ज्ञान योग का फूट भंडार है, वो सुप्रीम सोल क्या है, ज्ञान योग का ऐसा फूट भंडार है जिसमें से सारा ही ज्ञान सारा ही योग की शक्ति निकाल ली जाए तो भी संपूर्ण बचेगा, कभी खूटता ही नहीं, तो वो आत्माओं का बाप निराकार बाप आत्मा रूपी बच्चों को निराकारी वर्षा देगा या साकारी वर्षा देगा? निराकारी वर्षा देगा। निराकारी वर्षा क्या है? निराकारी वर्षा ज्ञान। निराकार बाप क्या वर्षा देगा? ज्ञान का वर्षा देता है। उस ज्ञान से, उस जानकारी से, सत्य बाप की सत्य जानकारी से आत्माएं जो पहले अपन को देह समझती थी वो सत्य परिचय मिलने से जान जाती हैं कि मैं आत्मा कौन, देह या आत्मा। आत्मा का रूप का पता चलता है, जैसे बाप का रूप वैसे बच्चे का रूप। बाप सांप जैसा लंबा तो बच्चा भी सांप जैसा लंबा। बाप ज्योति बिंदु निराकार अणु अणियान अणु से भी अणु तो बच्चा भी निराकार ज्योति बिंदु। तो रूप का भी वर्षा देता है और आत्मा की शक्ति का भी वर्षा देता है। क्या शक्तियां हैं? हैं स्थापना, पालना और विनाश की शक्ति हर आत्मा में भरी हुई है। क्योंकि आत्माओं के बाप में भी वेद की शक्ति भरी हुई है। तो वो बाप साकार देहधारी में आकर के तुमको सतो प्रधान बनाते हैं। सिवाय उस बेहद के बाप के और दुनिया में कोई की ताकत नहीं है। न चंद्रवंश स्थापन करने वाले ब्रह्मा की, चंद्रवंशियों के बाप चंद्रमा की, न इब्राहिम की, न बुद्ध की, न क्राइस्ट की, बड़े से बड़े इस दुनिया के महान कर्म महान बाप कहे जाने वाले कोई भी धर्म पिता की ताकत नहीं है। जो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनावे और इस तमो प्रधान दुनिया में कोई तुम्हें ही थोड़े ही तमो प्रधान हो है? तुम माने जो आज में भी आदि सनातनी सूर्यवंशी थे, अव्वल नंबर धर्म के थे, षष्ठ रूपी मनुष्य षष्ठ रूपी वृक्ष में आदि से लेकर के अंत तक, नीचे से लेकर के ऊपर तक अपने तने में ही रहते हो, दाई ओर की डालियों में या बाई ओर की डालियों रूपी धर्मों में कभी कन्वर्ट नहीं होते हो, सो इस दुनिया में तुम ही कोई तमो प्रधान थोड़े ही बने हो। और धर्म पिताओं के फॉलोअर्स भी तो तमो प्रधान बने हैं। तो सभी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स तमो प्रधान बन गए। सभी पतित बन गए। क्यों? क्योंकि वो सभी आत्माएं सच की जो 84 के चक्र में आती है या कम जन्म भोगती है वो सभी क्षर की कोट में आती है। क्षर तो होती है, पतित तो होती है। तो अभी जबकि सब पतित तो बन गए, सभी को पावन कौन बनावे? ब्रह्मा तो बना ही नहीं सका चंद्रवंशियों को, या कोई भी वंशवानों को। नौकुरी के ब्राह्मण उसकी गोद में खेलते, कोई को सत्व प्रधान नहीं बना सका, शरीर ही छोड़ गया। बाद में नंबर आता है द्वैतवादी धर्म पिताओं का, जो दो दो धर्म बनाए देते हैं दुनिया में, दो दो राज्य बनाए देते हैं, दो दो भाषाएं, दो दो मत, वो भी कोई पावन नहीं बना सकते, खुद भी नीचे गिरते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते हैं। तो देखो, एक की ही बलियारी है, किस एक की है? बताओ, किस एक की बलियारी है, है? शिव बाप यानी आत्माओं के बाप, आत्माओं के बाप की बलियारी है जो निराकार है, निर्विकारी है, सदैव निरहंकारी है, उसकी ये एक की बलियारी है। हा? अरे एक आत्मा की बलिहारी है या एक से अधिक आत्माएं हैं? सृष्टि निर्माण के लिए एक चाहिए या एक से अधिक चाहिए? है? एक चाहिए, नंबर वन चाहिए। सृष्टि पैदा करने के लिए एक चाहिए या ज्यादा चाहिए? कम से कम कितने? दो चाहिए। तो वो सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप अकेला कुछ नहीं करता। क्या? जैसे पुरुष को पिता बनने के लिए, परिवार बनाने के लिए आधार चाहिए, कोई न कोई कन्या रूपी माता रूपी धरणी चाहिए, ऐसे ही आत्माओं के बाप को भी क्या चाहिए? है? माता चाहिए या नहीं चाहिए? तो कौन सी माता में आता है? है? अरे अमेरिका में आता है, यूरोप में आता है, रूस में आता है, चीन में आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है, कौन से देश में आता है? भारत को माता क्यों कहा जाता है? भारत पिता क्यों नहीं कहते? है? कि दुनिया के देशों में एक भारत ही है जो मातृ प्रधान देश है, यहाँ की माताओं की ही बलियारी है। क्या? माताओं की ही बलियारी है, यहाँ की कन्याओं की ही बलियारी है, जो माता बन करके क्या करती है, है? आप भी विचारी सृष्टि बनाती है, पवित्र दुनिया बनाती है। बाकी दूसरे देशों की कन्याएं माताएं पवित्र दुनिया नहीं बनाती है। इसलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि न भारत माताओं को गुरु बनाने के बगैर उद्धार नहीं हो सकता। सभी संबंधों में गुरु सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ऊंचा माना जाता है, क्योंकि गुरु ही सदगति देने वाला है। तो माता गुरु को माता जरूर मानना पड़े और प्रैक्टिकल जीवन में मानना पड़े। कब? 63 जन्मों की बात नहीं है। जब भगवान बाप आकर के परिचय देते हैं, ब्रह्मा द्वारा आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को, कि तुम सब एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, तो एक के बच्चे हो तो माता होगी या नहीं होगी? बिगर माता के बच्चे हो, कोई माता है या नहीं है? है? और वो माता एक ही है या माताओं का संगठन है? एक माता है या माताओं का संगठन है? शिव शक्तियां हैं, शिव शक्तियों का संगठन है। उस संगठन में जो भी माताएं हैं, पिता के साथ संबंध जोड़ने वाली, इंद्रियों से ही संबंध जोड़ा जाता है, गुप्त रूप में आए हुए पिता की कितनी पत्नियां मानी जाती हैं भक्ति में, है? गुप्त पिता है तो उसकी पत्नियां भी गुप्त हैं, गुप्त संबंध जोड़ने वाली, तो माता हुई ना, है? उन माताओं के प्रति श्रेष्ठ वातावरण, श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति बने बनाए बगैर कोई भी भारत माता का पुत्र नहीं बन सकता। अर्थात सूर्यवंशी नहीं बन सकता। अगर दृष्टि वृत्ति खराब होती है तो क्या रिजल्ट आवेगा? है? अल्लाह के अव्वल दिन में ही 84 जन्म रहेगा या कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे धर्मों में? है? कन्वर्ट हो जाएगा। सभी ब्राह्मणों को अपने अपने दिल के अंदर ताक झांक करके अच्छी तरह देखना चाहिए कि हमारी दृष्टि वृत्ति इस शूटिंग पीरियड में ऐसी बनी है। अगर बनी है तो पक्का है क्या कि हम सूर्यवंश में आदि सनातन सत्य धर्म में आने वाले हैं जन्म जन्मांतर के लिए। अगर नहीं बनी है या थोड़ी बहुत बनी है तो जरूर आगे चल करके अगले कल्प में हम कोई न कोई जन्मों में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। हिस्ट्री उठा के देख लो, भारतवासी देवताएं ही भारत की आत्माएं ही भारत में जन्म लेने वाले ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में गए हैं और भारत की आबादी कम होती गई या बढ़ती गई? कम होती गई। इन कन्वर्ट होने वाले आत्माओं ने भारतवासियों को बड़ा धोखा दिया। अभी भगवान बाप आए हैं, हर आत्मा को अपना परिचय दे रहे, तो पहले पहले ये परिचय लेना है कि हम देवी देवता सनातन धर्म के अव्वल नंबर सूर्यवंशी ग्रुप में से हैं या कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मणों में से हैं, क्योंकि कन्वर्ट होते होते भारत को धोखा देते देते भारत की आज दुर्दशा हो गई है दूसरे देशों के सामने। भगवान बाप आकर के भारत की दुर्दशा को क्या करते हैं, हैं? अच्छी दशा में ले जाते हैं, अच्छे से अच्छी दशा। तो देखो एक की ही बलिहारी है, वो एक निराकार है या वो एक साकार है या वो एक भूत प्रेत आकारी है या तीनों ही नहीं है, क्या है? न आकारी है न साकारी है न एक निराकारी है। उस साकार में निराकार है, कॉम्बिनेशन है, जिसका यादगार भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर दिखाया जाता है, आधी स्त्री आधा पुरुष। तो गायन भी एकता होना चाहिए, साकार में आए हुए उस निराकार ही का ही सारा गायन है भक्ति मार्ग में। तो यादगार मंदिर भी सबसे जास्ती उसी के बनते होंगे, मूर्ति भी उसी की जास्ती सबसे जास्ती बनती होगी। वो कौन सी मूर्ति है? पूजी जाने वाली, जो दुनिया में जितनी भी खुदाई हुई है देश विदेश में सबसे जास्ती वो मूर्ति मिली है। कौन सी मूर्ति है? शिवलिंग। कैसी मूर्ति है? मूर्ति तो निराकार होती है साकार होती है, है? मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। तो मूर्ति क्यों कह दिया? गीता में आया है उस मूर्ति के लिए। ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से विस्तार को पाया है। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। उस मूर्ति में 10 इंद्रियां नहीं दिखाई देती हैं, एक ही इंद्रिय दिखाई देती है, बाकी इंद्रियां अव्यक्त हैं। और वो एक इंद्रिय भी पुरुषार्थ करने वाले, याद करने वाले, बड़े से बड़े देवता की मूर्ति नहीं कही जाती है। क्या नाम देते हैं? शंकरलिंग, क्या लिंग? शिवलिंग। इसका मतलब है कि शिव को तो इंद्रियां होते ही नहीं, शिव साकार है जो इंद्रियां होंगी, है साकार नहीं, फिर शिवलिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस लिंगधारी साकार मनुष्य में प्रवेश करता है वो अपने पुरुषार्थ से बाप समान शिव की स्टेज को प्राप्त कर लेता है। बाप भी कहते हैं, मैं तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बनाता हूं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो भले वो लिंग मूर्ति साकार की ही है, परंतु वो साकार आत्मा भी पुरुषार्थ करते करते याद का ऐसी स्टेज धारण करती है कि उसे एक निराकार शिव ज्योति बिंदु के अलावा कोई साकार इंद्रिय की याद नहीं रहती है। वो स्वयं ही शिव समान बन जाता है। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि में साकार रूप धारण करने वाला एक ही मनुष्य रूप दिखाया जाता है। कौन? शंकर। लिंग रूप में दिखाया जाता है, साकार बड़े रूप में दिखाया जाता है, परंतु उसकी मनबुद्धि रूपी आत्मा की अंदरूनी स्टेज निराकारी है, साकारी स्मृति में नहीं है। तो निराकार ज्योति बिंदु एक समान, 100% एक समान, दो आत्माएं हो गई। एक आत्मा जिसे अक्षर कहा जाता है, क्या? ऐसी आत्मा जो कभी भी क्षरित, पतित होती नहीं, और दूसरी आत्मा वो है जो क्षरित तो होती है, पतित तो बनती है, परंतु याद से, याद के पुरुषार्थ से ऐसी अक्षर स्टेज धारण कर लेती है। जो भारतवर्ष में गाया जाता है अमोघ वीर्य, क्या? अमोघ वीर्य, वीर्य माने सत्व। कैसा सत्व? नाम तो सुना है ना, सत्व और सती, सुना है ना नाम, तो वो ऐसी शक्ति है जो क्षरित नहीं होती, स्वयं भी क्षरित नहीं होती और इस संसार की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको भी क्षरित नहीं होने देती। महामृत्यु के समय ऐसी याद की स्टेज में खींचती है वाइब्रेशन से सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को खींचती है कि वो सारी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपने पुरुषार्थ से या तो बीमारियों के कर्म भोग से या तो धर्मराज की सजाओं से अपने पापों को भोग कर और उसे एक साकार सुनिराकार की याद में आखिरी स्थिर हो जाती, क्योंकि मनुष्य आत्माओं का ये स्वभाव है कि उन्हें सहज कर्म ज्यादा पसंद है या कठिन और कठोर कर्म ज्यादा पसंद है। इसलिए गीता में भी आया है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजे, जो सहज कर्म हो उसमें थोड़ा बहुत दोष भी हो तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। साकार को याद करना सहज है या निराकार ज्योति बिंदु को याद करना सहज है? साकार को याद करना सहज है, परंतु साकार को याद करेंगे तो वो साकार इस समय सृष्टि में जिसको हम याद करेंगे वो तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान है, तो उसकी याद करेंगे तो कैसा बनेंगे? है तमो प्रधान बनेंगे। अगर उस एक को ही याद करेंगे तो, अगर उस साकार में निराकार को भी याद करेंगे तो ये बात नहीं है। क्या बात है? हाँ, तो सिर्फ साकार को याद करेंगे तो तमो प्रधान जरूर बनेंगे और तमो प्रधान बनेंगे तो तमो प्रधान की निशानी है, गीता में भी निशानी बताइए, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च, जो दुनिया वालों से परेशान नहीं होता और जो दुनिया वालों को परेशान नहीं करता वो तमो प्रधान नहीं हो सकता, वो सतो प्रधान आत्मा कही जाती है। और तमो प्रधान क्या करता है? खुद भी दुखी होता है, परेशान होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। तो देखो, अगर सिर्फ साकार को याद किया तो क्या रिजल्ट निकलेगा? हैं? तमो प्रधान बनेंगे, लड़ाई झगड़ा मारा मारी बढ़ती ही जाएगी, खुद भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। तो क्या करना चाहिए? हैं? क्या करना चाहिए? निराकार को याद करें या साकार को याद करें? निराकार को याद ना करें, अरे निराकार जो सदैव सतो प्रधान है उसे याद करेंगे तो क्या होगा? है सतो प्रधान बनेंगे ना, बनेंगे। अच्छा, सुप्रीम सोल निराकार जैसे अगर हम सत्व प्रधान बनेंगे तो निराकार को याद करने वाले जो धर्म पिताएं हैं वो लंबे समय तक सत्व प्रधान सुप्रीम सोल बाप की तरह शांति धाम में सत्य धाम में पड़े रहेंगे या नीचे इस सृष्टि में आकर के पाठ बजाएंगे? क्या करेंगे? है? वहीं पड़े रहे। इस सृष्टि का आदि काल का जो सत्व प्रधान सतो सामान्य सुख है वो सुख स्वर्ग का नहीं भोग सकेंगे। तो सतो प्रधान सुप्रीम सोल को याद करेंगे। नहीं याद करेंगे, अलग है। इसलिए बोला कि प्रवृत्ति में जो सुख है वो निवृत्ति में सुख नहीं है। प्रवृत्ति का अर्थ ही है प्रकष्ट, प्रामाणिक प्रकष्ट रूप। कैसा रूप? प्रकष्ट रूप। अवृत्ति, वृत्ति माने चारों ओर से घेरना, उसको क्या कहते हैं? वृत्त, वृत्ति। कैसी वृत्ति? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में क्या होता है? स्त्री और पुरुष की प्रवृत्ति होती है साकार में, तो एक दूसरे को वृत्ताकार रूप में घेर लेते हैं या नहीं घेरते हैं, तो उसे कहेंगे प्रवृत्ति। वो प्रवृत्ति में जो सुख है वो निवृत्ति में सुख सन्यासियों को नहीं हो सकता। और जितने भी धर्म हैं, विधर्मी विदेशी, वो धर्म और उनके धर्म पिताएं सब निवृत्ति वाले हैं, प्रवृत्ति का पोषण करने वाले नहीं हैं। माने जिसके साथ प्रवृत्ति धारण करें उसके साथ जीवन भर निभाने वाले नहीं है। एक भारत ही है जहां प्रवृत्ति मार्ग को विशेष रूप से तरजीह दी जाती है। इसलिए भारतवासियों को जितना सुख मिलता है उतना दूसरे धर्म वालों को सुख नहीं मिलता। भगवान बाप भी कहते हैं तुम पक्के पक्के भारतवासी इस सृष्टि का तीन हिस्सा सुख भोगते हो और एक हिस्सा कलयुग में सिर्फ दुख भोगते हो, और धर्म वाले आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं। तो क्या करेंगे? दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले बनेंगे या स्वधर्म में बन करके पक्के रहेंगे? है स्वधर्म में पक्के रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे। आत्मा है स्व और देह है पर। स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भया, अपने धर्म में आत्मिक धर्म में सदैव स्थित रहने से सदा ही सुख की शूटिंग करें। सदैव का मतलब देह के धर्म कब से आते हैं? द्वैतवादी द्वापर युग से आते हैं। जहां दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो 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 चार चार आठ आठ धर्म पिताएं होने लगते हैं, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो भाषाएं होने लग पड़ती हैं, तो झगड़ा होता है या नहीं होता है? हैं? होता है। इसी तरह जो भारतवासियों की पक्की प्रवृत्ति है, जिसका सर्वोत्तम सैंपल पुरुषोत्तम राम को माना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण को माना जाता है, वो प्रवृत्ति कभी भी दुख देने वाली नहीं है। वो आत्माएं नर से नारायण बनने वाला या राम बनने वाला कलयुग के अंत में भी आता है, जन्म लेते लेते तो भी विष्णु के समान सात्विक स्टेज में, आत्मिक स्टेज में रहता है, क्योंकि वो ही आत्मा है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली, जिनका कॉम्बिनेशन विष्णु कहा जाता है, कब? सृष्टि के आदि में, आदि सो अंतिम जन्म में भी, भगवान के आने से पहले अंतिम 84वें जन्म में भी वो आत्माएं विष्णु के समान स्वभाव संस्कार से एक हो करके रहती है, लड़ाई झगड़ा होने की बात ही नहीं। नहीं तो भारत में भी आज क्या हालत है, इन विदेशियों के प्रभाव में आकर के जो भारतवासी प्रवृत्ति मार्ग के युगल हैं, वो भी आपस में लड़ते झगड़ते देखे जाते हैं या नहीं देखे जाते हैं? है? घर घर में लड़ाई है या नहीं है? घर घर में लड़ाई है। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति में पक्के नहीं है, एक दूसरे को घेर करके नहीं रहते हैं। एक दूसरे को अपने में समा कर नहीं रहते हैं, इसलिए ये हालत हो गई है व्यभिचार के कारण। एक में दृष्टि वृत्ति नहीं डूबती है, एक से दिल खोल करके रज रज के बातें नहीं करते हैं, दूसरों से करने लग पड़ते हैं। ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों से भी एक के साथ नहीं रहते हैं, जैसे सतयुग में राधा कृष्ण की दृष्टि एक दूसरे में समा कर रहती है। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, तो वहां कोई भी प्रकार का दुख अशांति होती ही नहीं। लेकिन आज देखो उन्हीं भारतवासियों का क्या हाल हो गया है, विदेशियों के प्रभाव में आते आते खान पान बदल गया, भाषा बदलने लगी, दृष्टि वृत्ति कर्म इंद्रियों का लगाव सब बदल गया, शिक्षा बदल गई, व्यवहार बदल गए, और विदेशियों के मुकाबले भारतवासी 7 से ज्यादा दुखी हो गए, 7 से ज्यादा तमोप्रधान हो गए। तो देखो सारी दुनिया तमोप्रधान हो गई और तुम भारतवासी सबसे जास्ती तमोप्रधान हो गए, सभी पतित बन गए। तो अभी सभी को पावन कौन बना दे? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कौन बनावे? ब्रह्मा? नहीं, सभी को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाने वाला प्रवृत्ति मार्ग वाला एक ही कॉम्बिनेशन है आत्माओं का, दो आत्माओं का कॉम्बिनेशन है मुकर्रर। कौन कौन है? आत्माओं का बेहद का बाप और मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप आदम एडम आदिदेव जिसे कहा जाता है। उस आदिदेव में आदम में वो खुदा खुद आया हुआ है। क्या 63 जन्म भारतवासी बुलाते रहे तब नहीं आया? आया और अभी खुद आया हुआ है, इसलिए उसका नाम खुदा है। तो उस खुदा जो खुद आया हुआ है उसको ही सब कुछ नहीं समझ लेना है। क्या वो ही सब कुछ है? है खुदा आया है, भागकर आया है ना? नहीं, भागकर आया। तो पिता अर्थात पुरुष पत्नी के पीछे भागता है, माशूका के पीछे भागता है या माशूका आशिक के पीछे भागती है? कौन भागता है? हैं? हैं? माता पिता के पीछे भागते हैं?
माशूका के पीछे भागते?
माता के पीछे?
माशूका के पीछे भागते हैं?
माता पिता के पीछे भागते हैं? माता पिता के पीछे? क्या बोलते हो, भाषा नहीं समझ में आती है। मातु के पीछे? मासुक, हाँ माशूक के पीछे आशिक भागता है। तो वो जो पीछे पीछे भागने वाला है वो फॉलो करता है। तो जो फॉलो करता है वो पावरफुल हुआ या जिसको फॉलो किया जाता है वो पावरफुल हुआ? जिसको फॉलो किया गया वो पावरफुल हुआ। धर्म पिताएं फॉलो करते हैं या कोई उनके पीछे फॉलो करता है? फॉलोअर्स उनके पीछे फॉलो करते हैं। तो पावरफुल धर्म पिता हुआ, परंतु ऊपर से आने वाले जो धर्म पिताएं हैं दूसरे धर्मों के वो इस मनुष्य सृष्टि की ऊंचते ऊंचे आत्मा को फॉलो नहीं करते हैं क्या? आदम को फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं, उसको तो भूल ही जाते हैं। सिर्फ नाम रहता है कोई आदम था। आदम के मुकाबले जो दूसरी दूसरी कमजोर आत्माएं हैं इस मनुष्य शक्ति की, उनको नंबर वार फॉलो करते हैं। तो कमजोर को फॉलो किया या पावरफुल को फॉलो किया? वो धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं, वो पावरफुल को पावर फॉलो करते हैं, कमजोर आत्माओं को फॉलो करते हैं ना। तो देखो दुनिया में जितने भी हैं धर्म पिता हैं, वो सब देहधारी आत्माओं को फॉलो करते हैं। वो परम पिता परमात्मा शिव जो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वो भी फॉलो तो करता है। किसको? देहधारी को फॉलो करता है, देह धारण करने वाली आत्मा को फॉलो करता है। लेकिन वो आत्मा मनुष्य सृष्टि के बीच में तुरीय आत्मा है, सबसे अलग थलग है। ये सभी मनुष्यों जैसी है, है अलग थलग है। जैसे आत्माओं के बीच में सुप्रीम सोल तुरिया है, उसके जैसा कोई आत्मा नहीं। ऐसे ही मनुष्य शक्ति में मनुष्यों के बीच में जो आदम है, मनुष्य शक्ति का आदि पुरुष है, उसके जैसा कोई भी मनुष्य नहीं। उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, भाग करके आता है। तो वो आदम क्या हुआ, आशिक हुआ या माशूक हुआ? आदम मनुष्य सृष्टि का पहला पुरुष जो कहा जाता है आदिदेव, वो आशिक हुआ या माशूक हुआ? है? आशिक हुआ। अरे वो कहते मासुक, आशिक नहीं तो मासुक होगा, मासुक नहीं तो आशिक होगा, कुछ तो होगा, दो में से एक ही होगा। हैं? दोनों आत्माओं में एक मनुष्य सृष्टि का आदि आदि पुरुष आदम और दूसरी आत्मा जो देह का जन्म लेती ही नहीं, सदैव निराकार है, देहधारी बनती ही नहीं, उन दोनों आत्माओं के बीच में आशिक कौन है और मासूक कौन है? है जो देहधारी है, देहधारी नहीं है वो आशिक, और जो देहधारी है वो मासूक हुआ। तो देखो जिसका आशिक, जिसके पीछे भागने वाला भगवान भी है, कौन? जिसे सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वो उसका भी मासूक है। तो और मनुष्य आत्माओं का क्या होगा? और मनुष्य आत्माओं का संबंध उसके साथ क्या हुआ? और मनुष्य आत्माएं उसके पीछे पीछे भागेंगी या वो मनुष्य आत्माओं के पीछे पीछे भागेगा? आशिक पीछे भागता है, मासूम के पीछे भागता है। तो दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो आशिक हुई या मासूक हुई है? आशिक हुई। और सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं का और सुप्रीम गॉड फादर भगवान का भी मासूक एक ही है। कौन? जिसके लिए भगवान बाप भी कहते हैं। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई मनुष्य कोई चीज नहीं है, सदा कायम इस सृष्टि पर एक ही शिव बाबा है। क्या? एक ही शिव बाबा है जो इस सृष्टि पर भी सदा कायम है। मैं तो इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं हूँ। कौन? शिव। जो सदा कायम है वही असली सत्य है, या जो कभी कायम है कभी कायम नहीं है वो सत्य है? जो सदा कायम है, सदा अटल अखंड अडोल है, वो ही सत्य है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत्य कभी टिकता नहीं, उसके पांव नहीं होते। सच्चे में और झूठे में अगर युद्ध हो जाए तो कौन टिका रहेगा? है? इतने विदेशी आक्रांताएं भारत में आए, भारत में पांव जमा सके तो झूठे थे या सच्चे थे? झूठे थे। और भारत? भारत ही सत्य है, सदा सत्य है। और धर्मखंड असत्य हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। अमेरिका 500 साल पहले मनुष्यों के मस्तिष्क में ही नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले मनुष्यों के दिमाग में ही नहीं थी। सदा अविनाशी खंड कौन सा है दुनिया में? भारत। तो भारत ही सत्य है। भा माने ज्ञान, ज्ञान की रोशनी। रत माने लगा रहने वाला, जो सदा ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है उसका नाम भारत है। और ज्ञान की रोशनी में लगा रहना तीन मूर्तियों में से किसे कहेंगे? जो शिव की मुख्य तीन मूर्तियां कही जाती हैं। है? कौन सी मूर्ति सदा सत्य है? है? कौन? शंकर। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ देता है, ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते, याद भी कोई नहीं करता। तो जो सदा सत्य है उसी को दुनिया याद करती है। धर्म पिताएं भी उसी आत्मा को याद करते हैं जिसको कहते हैं अल्लाह बलदीन। वो अल्लाह है, ऊंचे से ऊंच को अल्लाह कहा जाता है। वो कभी नीचे गिरता ही नहीं। अव्वल नंबर की धर्म की स्थापना करता है। इसलिए मुसलमान लोग पहले अक्षर को अलफ कहते हैं, नंबर वन को क्या कहते हैं? अलफ। सदैव खड़ा हुआ, कभी भी गिरता ही नहीं, हीरो पार्ट धारी है, ऑलराउंड पार्ट धारी है, रंगमंच पर कभी पार्ट बजाए और कभी न बजाए, ऐसा होता ही नहीं। तो बताया ऐसा सारी मनुष्य सृष्टि को पावन कौन बना दे है? कौन बना दे पावन? सत्ययुग कौन बना दे है? इस सृष्टि को है जो सदा सत्य है, इस सृष्टि में वो ही पावन बना सकता है या कोई और पावन बना सकता है? हैं? वो ही पावन बना सकता है, लेकिन कब है? जब स्वयं पावन बने तब, स्वयं सत्व प्रधान बने तब, स्वयं संपन्न पुरुषार्थी बने तब, या पहले ही है? पहले स्वयं संपन्न बने। तो शंकर की जो मूर्ति है उसके लिए भी कहा भगवान बाप ने, बथ नाटे पहनी, क्या एक कौड़ी की भी कीमत नहीं, जिसे कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देव विष्णु देव, उन्हों से भी बड़ा महादेव, वो भी भरतनाट्य पहने। क्यों क्यों भरतनाट्य पहने? कारण? अरे कोई कारण होगा कि नहीं होगा? क्या कारण है? है? कारण है कि वो भी किसी को याद करता है। जो महादेव कहा जाता है, देवताओं में सबसे बड़ा देवता कहा जाता है, वो भी अपने से ऊपर वाले को याद करता है। तो उससे भी ऊपर वाला कौन? उसको भी तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने वाला कौन? अरे कोई है या नहीं है? अपने आप बन जाता है? कोई है? कौन है? हैं? शिव बाप। जो ज्ञान का भंडार है, जानकारी का भंडार है, अखूट भंडार, उसकी जानकारी ज्ञान का भंडार कभी खूटता ही नहीं। वो जब तक ना आवे, उस भारत में कहो, शंकर में कहो, नारायण वाली आत्मा में कहो, तब तक उसको अपनी आत्मा का परिचय मिल ही नहीं सकता, और आत्मा के बाप का परिचय मिल ही नहीं सकता। तो उसका भी उद्धार करता कौन हुआ? उत माने ऊपर, हर माने हरण करने वाला, हरण करके ऊपर ले जाए, उद्धार करता कौन हुआ? शंकर की आत्मा को भी उद्धार करके ऊपर की ओर हरण करके ले जाने वाला कौन हुआ है? शिव बापू। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उसको शरीर है ही नहीं। वो सुप्रीम सोल परम सत्य साबित हुआ। क्या है परम सत्य? माना जो मनुष्य शक्ति की आत्माएं हैं, मनुष्य शक्ति का बाप कौन है? शंकर आदिदेव। और उसका भी परम पिता कौन? जिसका कोई पिता है नहीं, वो सबका पिता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का भी पिता है, ब्रह्मा का भी पिता है, और धर्म पिताओं का भी जो बाप अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है, कौन है? शिव बाबा। साकार निराकार का मेल, निराकार शिव, साकार बाबा, ग्रैंडफादर, दोनों का मेल। तो वो अल्लाह है, अल्लाह माने सबसे ऊंचा। ऊंचा और नीच का सवाल इस सृष्टि पर पैदा होता है या निराकारी दुनिया में ऊंच नीच का सवाल पैदा होता है? इस सृष्टि पर देखा जाता है अल्लाह को। तो वो आदम अल्लाह के समान बन जाता है। अल्लाह जो सत्य में अल्लाह है, आत्माओं में ऊंचा, उसके समान बन जाता है। इसलिए कहा जाता है आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, आदम खुद नहीं आता है सारी मनुष्य सृष्टि के सामने उद्धार करने के लिए। खुद आता है झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ दिखाया गया है, मनुष्य सृष्टि के झाड़ पर सबसे ऊपर आत्माओं को खींच रहा है, हरण करके ऊपर ले जा रहा है। वो खुद ही ये काम करता है कि कोई कराता है? तो वो ही अल्लाह हो। इसलिए कहते हैं आदम खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो देखो जो खुदा के नूर से जुदा नहीं है, एक ही बलियारी है। तो गायन भी, पूजन भी, यादगार भी एक का होना चाहिए। दुनिया में भी जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें जो लिंग मूर्तियां मिली हैं, वो सबसे जास्ती तादाद में मिली है। जिसका सबसे जास्ती गायन और पूजन होता है, और गायन जब एक का होना चाहिए तो कैसा गायन है? ऐसा नहीं इस्लामी इब्राहिम का गायन करते हैं, क्रिश्चियन क्राइस्ट का गायन करते हैं, मुस्लिम मोहम्मद का गायन करते हैं। ऐसा गायन नहीं, सारे ही मिलकर के हिंदुओं मुसलमानों सिखों ईसाइयों जो गाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बिना बाप के हो जाएंगे, भाई भाई दो बाप से पैदा होंगे, तो असली भाई होंगे, असली भाई कब होंगे? जब एक बाप से पैदा हो। तो गायन भी अब विचारी का होना चाहिए, एक का होना चाहिए, ये नहीं कि पंजाब के लोग गुरु नानक का भी गायन करते हैं भले हिंदू हो। हर एक पंजाबी के घर में गुरु नानक का चित्र टंगा होगा, और फिर महादेव का भी चित्र रखते हैं। तो एक का गायन पूजन करते हैं या व्यभिचारी गायन पूजन करते हैं? व्यभिचारी करते हैं। अनेकों का गायन पूजन करें तो व्यभिचारी हो गया। गाते भी हैं, गाते भी बहुतों का गाते हैं और बहुतों की पूजा करते हैं। आज कोई के घर में चले जाओ, एक की पूजा करते हैं, एक मूर्ति रखते हैं या अनेकों मूर्तियां रखी हुई हैं। चार ग्यारह छियासठ की वाणी का पांचवा पेज देखो, दुनिया में जो भी लोग हैं, कोई भी धर्म के हैं, ये पारसी लोग हैं, वो आग की पूजा करते हैं। अब ये आग की पूजा किसकी पूजा है? चैतन्य की या जड़ की?
जड़ की पूजा करते,
तत्व की पूजा करते, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांच तत्वों से ये शरीर बनता है, देह बनती है, तो देह की पूजा करते हैं या नहीं? है? देह की पूजा करेंगे तो देह अभिमानी बनेंगे ना। आग क्या करेगी? आग क्या करेगी? आग क्या करती है? जलाई देती है। तो ऐसे इस दुनिया के सभी धर्म वाले ऐसे कामाग्नि में जलने वाले बनते हैं ना। कैसे बनते हैं? काम क्रोध की अग्नि में जलने वाले बन जाते हैं ना। सबका जलना मुनना, जैसे रावण जलता है, सबका अपना अपना है। कोई किसी तरह से जलता है, कोई किसी तरह से जलता है। रावण को एक सर है, है? अनेक सर है। सिर्फ ये भारतवासी हैं। क्या कहा? सब धर्म वालों के बीच में, सब धर्म खंड वालों के बीच में ये भारतवासी हैं जो शिव को पूजते हैं। किसको? शिव को पूजते हैं। अरे जिस शिव को पूजते हैं, शिवलिंग को कहो, वो पत्थर का लिंग नहीं है, है? अरे जड़ तत्व है या नहीं है? तो बुद्धि कैसी बनेगी? है जड़ तुम्हें ही बनेगी, क्योंकि वो भारतवासी जानते ही नहीं है। उस जड़ शिवलिंग के पत्थर में जो पूजा का आदि रूप था द्वापर के आदि में वो सात्विक यादगार थी। दुनिया में हर चीज पहले सात्विक होती है, बाद में तामसी बनती है। तो जो शिवलिंग की यादगार सोमनाथ मंदिर में थी वो सात्विक रूप था। क्या था उस लिंग में और आज के लिंग में जो पूजा करते हैं मंदिरों में, क्या अंतर है? है क्या कह रहे हो? सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है और जो आज मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, उन दोनों में क्या अंतर है? अभी तामसी बन गए? क्यों? वो सोमनाथ मंदिर में जो पत्थर का लाल रंग का पत्थर लिंग के रूप में रखा था वो तामसी नहीं होता है। हाँ, उसमें हीरा था, वो हीरा यादगार है, वो असली चीज नहीं है। किस बात की यादगार है? है वो हीरो पार्टदारी की यादगार है। किसकी यादगार है? हीरो पार्टदारी, जिसमें निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। उस निराकार ज्योति बिंदु की याद से वो हीरो पार्टधारी क्या बनता है? सारे संसार का हीरो बनता है। आज के जो शिव के मंदिर हैं उनमें पत्थर का लिंग तो रखा है, लेकिन असली बात भूल गई, जिस कारण से उस लिंग को शिवलिंग कहा जाता है। कहा जाता है इसे बुद्धिमान लोग पूछ सकते हैं, शिवलिंग क्यों कहा जाता है? शिव को कोई इंद्रियां होती है क्या? शिव साकार है क्या? शिव बिंदु का नाम है, निराकार का नाम है, या साकार शरीरधारी का नाम है? बिंदु का नाम है। वो भी गीता में कहा है अणु अणियांसम, अणु से भी अणु रूप है, अति सूक्ष्म। तो जो अति सूक्ष्म है, अणु से भी अणु है, बुद्धि रूप है या नहीं है? उसमें बुद्धि है या नहीं है? बुद्धि तो है, लेकिन वो बुद्धिमानों की भी बुद्धि है। आज दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक बुद्धिमान माने जाते हैं, भारतवासी भी उनको क्या समझते हैं? बड़े बुद्धिमान। लेकिन दुनिया में जितने भी बुद्धिमान हुए उन सब बुद्धिमानों की बुद्धि एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। वो शिव की यादगार जो निराकार ज्योति बिंदु का नाम शिव है, वो सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में दिखाया गया था, जिसकी याद से इस मनुष्य सृष्टि का वो मनुष्य जो आदम कहा जाता है हीरो बनता है। तो देखो सिर्फ ये भारतवासी हैं जो उसे शिव को पूजते हैं, इसको शिव को पूजते हैं। क्यों? शिवलिंग को शिव कहें नहीं कहें? है? कहें कि नहीं कहें? है? शिवलिंग के आज के बनाए हुए तामसी रूप को शिव कहें या आदि में जो शिवलिंग बनाया गया था पूजा के लिए राजा विक्रमादित्य के द्वारा, उसको शिव कहें? है? उसी को शिव कहें। जो दूसरे भी हैं भारत में रहने वाले वो भी शिव को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान समझते हैं वो आत्माएं, ज्ञान माने जानकारी रखती हैं सत्य की, कि इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में एक सत्य कौन है जो सदा शिव कहा जाता है, सदा सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, वो कौन है? है? शंकर को तो नहीं कह सकते। सत्यम शिवम कल्याणकारी कह सकते हैं? अरे सारी दुनिया का विनाश कर देता है तो कल्याणकारी हुआ, क्या कहेंगे? है? कल्याणकारी हुआ। अच्छा, दुख दे के नहीं, दुख अनुभव करके नहीं मरते हैं दुनिया के लोग? अरे सुखी होकर के मरते हैं या दुखी होकर के मरते हैं? तो कल्याणकारी है, है? फिर भी कल्याणकारी है, है? है? अरे दुख देना कल्याणकारी होता है, है? दुख देना सृष्टि का कल्याण, सृष्टि के 500 करोड़ मनुष्य सुखी हो जाते हैं, है? तो जो आत्माएं ये ज्ञान समझती हैं, सबकी आत्माएं ये ज्ञान समझती हैं कि हमारा बाबा ही शिव है। क्या? हमारा बाबा ही शिव है, क्रिश्चियंस का क्राइस्ट नहीं, इस्लामियों का इब्राहिम नहीं, मोहम्मद का वो मुसलमानों का मोहम्मद नहीं, सिखों का गुरु नानक नहीं, शिव नहीं है। शिव माने कल्याणकारी, जो समझती है इस ज्ञान को कि हमारा बाबा ही शिव है। बाबा पिता नहीं बोला, क्योंकि सब मनुष्य आत्माओं का पिता तो एक ही है, वो बाबा नहीं है, चाचा नहीं है, मामा नहीं है, काका नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई धर्म में वो एक ही बाबा है। भले महामृत्यु के समय उस बाबा को सब पहचानेंगे, जो मनुष्य शक्ति के झाड़ में सुप्रीम सोल बाप ने साक्षात्कार के द्वारा शक्ति वृक्ष के सबसे ऊपर बैठा हुआ दिखाया है, देह के रूप में है या ज्योतिबिंदु के रूप में है? है? देह के रूप में है, तो बाबा हो सकता है कि नहीं?
अरे
शिव जो आत्माओं का सिर्फ बाप है, दूसरा संबंध नहीं। वो बाप बाबा नहीं है। वो जब शरीर में प्रवेश करता है तो सर्व संबंधी बनता है। हर प्रकार का संबंध इंद्रियों के द्वारा उसके साथ मनसा में जोड़ा जा सकता है, शूटिंग की जा सकती है मन के संकल्पों से। जैसे कहते हैं ब्रह्मा ने मन के मनसा से चार पुत्र पहले पैदा किए, मानसी संतान। ऐसे ही वो शिव हमारा बाबा है, साकार है, परंतु साकार में कौन विराजमान है? निराकार विराजमान है, जो निराकार शिव कहा जाता है। तो इसलिए सभी आत्माएं शिव का पूजन जरूर करती हैं। क्या कहा, ये झूठी बात कही या सच्ची बात कही? सभी आत्माएं जो आत्मिक रूप में पुरुषार्थ करके स्थित हो जाती हैं, वो सभी आत्माएं या 500-700 करोड़ सभी मनुष्य आत्माएं है? हाँ, जो आत्मिक रूप में स्थित हो जाती हैं याद का पुरुषार्थ करके, वो सभी आत्माएं शिव का पूजन जरूर करती है। क्या कोई भी जन्म में सतयुग त्रेता में है तो अपनी भ्रगुटी के मध्य में भी बिंदु को याद करती है कि नहीं? द्वापर कलयुग में है तो भी कोई भी जीवन में किसको याद करेंगी? शिव को जरूर याद करती है। ड्रामा बना हुआ है। क्या ये अविनाशी ड्रामा आत्मिक रूप में जो स्थिर हो जाते हैं महामृत्यु के समय, उनके लिए ये गायन है। क्या शालिग्राम भक्ति मार्ग में जिसकी यादगार चलती है, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कोई लाख शालिग्राम बनाते हैं, 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख भी बनाते होंगे। क्या ये ड्रामा बना हुआ है कि वो 4.5 लाख आत्माएं इसी पुरुषार्थी शरीर से क्या बन जाती हैं? है आत्मा बन जाती है। जो शालिग्राम है किस रूप में दिखाते हैं? छोटा दिखाते हैं कि बड़ा? बड़ा है शिवलिंग और छोटा है शालिग्राम। क्या अंतर है दोनों में? शिव के चारों ओर कोई बंधन नहीं है। क्या कोई बंधन में बना हुआ है? नहीं। और शालिग्राम के चारों ओर बंधन दिखाते हैं, तुम सब सीताएं हो। क्या तुम सब सीताएं हो बंधन में रहने वाली, और राम बाप एक है या बंधन में रहने वाला है? एक राम बाप ही निर्बंधन है। तो बाप समझाते हैं कि तुम सब शालिग्राम की यादगार हो। 4-4.5 लाख जो रुद्र यज्ञ में बनाए जाते हैं मिट्टी के शालिग्राम हैं या चैतन्य है?
चैतन्य
है, देवान में नहीं है। 4.5 लाख देवान में नहीं रहते। अंतिम पुरुषार्थ तक भी कुछ न कुछ परसेंटेज में देवान में रहते हैं या नहीं रहते हैं? तो मिट्टी के हैं या नहीं है, इसलिए मिट्टी के शालिग्राम बनाए जाते हैं। बाकी एक बड़ा बनाया जाता है, क्या? लिंग। जो लिंग है वो भी तो मिट्टी पत्थर का बनाते होंगे, नहीं बनाते हैं? बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? परंतु जो भक्त बनाते हैं वो अज्ञानी है या ज्ञानी है? अज्ञानी। और तुम बच्चे ज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर क्या गया ज्ञान है कि वो जो रुद्र यज्ञ रखे जाते थे उनमें जो शिवलिंग बनाया जाता था वो मिट्टी पत्थर का होता था या नहीं होता था? है? होता तो था, लेकिन वो बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के सबसे बड़ा काम करता है, सबसे बड़ा पार्ट बजाता है। है? बजाता है कि नहीं? कैसे? नाक से या कान से? है? कान से, आंख से। तो कान की पूजा होनी चाहिए, नाक की पूजा होनी चाहिए।
काम करके दिखाते
हैं। क्या काम करके दिखाते हैं? कौन सी इंद्रिय से काम करके दिखाते हैं? जोर से नहीं बोलते, ज्ञान इंद्रियों से काम करके दिखाते हैं। है? कर्म इंद्रियों से, सारी कर्म इंद्रियों से। तो सारी कर्म इंद्रियों की पूजा होनी चाहिए। अरे शिव के मंदिर में सारी कर्म इंद्रियों की पूजा होती है क्या? है? एक ही प्रबल इंद्रिय है कर्म इंद्रियों में जो एक मनुष्य मात्र के सिवाय और कोई भी मनुष्य मात्र इस दुनिया का उस इंद्रिय को संपूर्ण नहीं जीत पाता। एक ही आत्मा है आदम, जिसको लोग भूल से खुदा मान लेते हैं। वो आत्मा साकार है या निराकार? साकार। तो लिंग भी उसका साकार होगा या निराकार? साकार। वो साकार लिंग को शंकर लिंग कहते हैं। है? शंकर लिंग फिर भी नहीं कहते, क्यों? हाँ, वो जब तक पुरुषार्थी रूप है, इंद्रिय को जीतने वाला पुरुषार्थ करता है, तब तक वो संपन्न नहीं है। जब संपन्न हो जाता है तब वो शिव समान निराकारी बन जाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है, तब उसकी पूजा होती है। देवताओं के भी संपूर्ण रूप की पूजा होती है या अधूरे रूप की पूजा होती है? है? संपूर्ण रूप की पूजा होती है। तो बाप समझाते हैं कि देखो सब तरफ से जहां भी देखो, सब तरफ से देखो,
अब ये ऐसे तो नहीं है कि उस सार्वभूम अव्यक्त मूर्ति को देवताएं ही पूजते हैं। इन्होंने तो बैठ करके देवताओं के भी आगे रख दिया है लिंग है? क्या कहा? सोमनाथ मंदिर में या जितने भी पुराने पुराने मंदिर हैं शिव के, उनमें बीच में शिवलिंग रखा है और चार ओर देवताओं की मूर्तियां हैं, उनमें मुख्य स्थान पर शंकर को रखा है। तो भक्तों ने देवताओं के आगे लिंग रख दिया है, परंतु देवताओं के आगे तो लिंग नहीं रखा जाता है ना है? सतयुग त्रेता में देवताएं सामने लिंग रख करके पूजते या याद करते हैं है? नहीं करते। पहले चित्र बनाया था क्या? पहले चित्र बनाया था तो राम कृष्ण क्या कहा? राम कृष्ण फलाने फलाने देवताएं, उनके ऊपर भी वो लिंग रख दिया क्या? कृष्ण के सामने लिंग रख दिया, गोपेश्वर मंदिर बना दिया। राम के सामने लिंग रख दिया, रामेश्वर मंदिर बना दिया। ये राम और कृष्ण कलाओं में बंधे हुए देवताएं हैं या कलातीत सूर्य समान भगवान है? परंतु देवताओं के आगे तो लिंग नहीं रखा जाता है ना। तो बाबा ने कहा वो देवताएं थोड़े ही पूजा करते हैं। द्वैतवादी द्वापर युग से भक्त पूजा करते हैं, अज्ञानी भक्त, अंधश्रद्धालु भक्त। वो पूजा करते हैं, वो देवताएं नहीं पूजा करते हैं। वो देवताओं ने तो जो सतयुग त्रेता में थे, उन्होंने तो सुप्रीम सोल बाप से, बेहद के बाप से अपना बेहद का सुख शांति का वर्षा ले लिया कि नहीं ले लिया? जब बेहद सुख शांति का वर्षा ले लिया तो पुरुषार्थ करेंगे करेंगे हैं? नहीं करते। वो तो मालिक बन जाते हैं। क्या कहा? मालिक बन जाते हैं। वो पूजा करते ही नहीं है। और ये बात तो तुम भी गाते हो भक्ति मार्ग क्या? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में देवताएं सुमिरन करें उसका तो नीचे का एक हो गिरे, दुख का एक होए होए नहीं। तो देखो ये बात सच्ची है ना। सुख में देवताएं भगवान का सुमिरन स्मरण नहीं करते। तो देखो बंद कराए दिया था। बंद कराए दिया था कि नहीं, कि देवताएं बैठ करके सुप्रीम सोल भगवान को याद करें, ये रंग है। अभी वो चित्र वो जो हैं, ये महिमा दिखलाते हैं, पर झूठी महिमा थोड़े ही दिखलानी है, राइट महिमा दिखलानी है कि देवताएं तो कहते हैं हम पावन हैं कि अपवित्र, पावन हैं। वो कोई भी देवताएं सुख में सिमरन नहीं करते तो फिर वो शिव बाबा को जानते ही कहां हैं। जो सिमरन करें, स्मरण करें, सिमरन माने स्मरण कब करें, जब जानते हो, जानते ही कहां हैं, जो याद करें। तो ऐसे ऐसे भी भूल होती है, तो उन चित्रों को बाद में निकाल देते हैं। अरे पता नहीं वो चित्र निकला, वो अभी तक भी निकला या नहीं निकला। किसी ने सभा में कहा निकाला है, खास उड़ीसा में देखो, सूर्य मंदिर में देवताओं के आगे लिंग रखा है, है गंदे चित्र दिखाए गए हैं, है तो उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया कि मंदिर में रखा गया, निकाला। तो जिसके पास भी वो ऐसा चित्र रखा हुआ हो, क्या कि कोई देवता बैठ करके क्या करे, शिवलिंग की पूजा करे, तो उसका चित्र भी उठाए देना चाहिए। क्या कहा है, है उसका चित्र भी उठाए देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्यों है, हाँ, कि जो तुमने चित्र रखा हुआ है वास्तव में तो वो देवताएं पूजा करते ही नहीं है। उसमें भी वो चित्र या तो निकाल देना चाहिए, सभा में किसी ने कुछ कहा, कहा बाबा तो यहां देखते हैं ना संगम में, तो मालूम पड़ता है क्या यहां ब्राह्मणों की सभा में देखते हैं, तो मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है, क्या देखते हैं, है कोई राम देवता के पुजारी बन जाते हैं, कोई कृष्ण देवता के पुजारी बन जाते हैं, कहते हैं शिव कुछ होता ही नहीं है, शिव की आत्मा होती ही नहीं। राम कृष्ण ही भगवान बन जाते हैं, जैसे जैनी लोग कहते हैं। क्या? कि जो मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, वो तीर्थंकर बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। मनुष्य से क्या बन जाते हैं? भगवान बन जाते हैं। तो यहाँ भी बाबा बच्चों को देखते हैं, क्या देखते हैं? कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। कोई भाई ने कहा गोपेश्वरम और रामेश्वरम का अंतर दिखाया गया है, और उसमें दिखाया गया है कि शिवलिंग भी है, पूजा कर रहे हैं। हाँ, बाबा ने बोला हाँ, तो पूजा करने वाले फिर वो दिखलाने चाहिए क्या? जो पूजा कर रहे हैं वो फिर दिखलाने चाहिए कि ये सिंगल ताज वाले क्या, जो पूजा कर रहे हैं वो सिंगल ताज वाले। विक्रमादित्य को कैसे दिखाया, सिंगल ताज या डबल ताज? जो पूजा कर रहे हैं वो सिंगल ताज वाले, क्योंकि इनमें क्लियर है ना, देवताएं तो हैं डबल ताज वाले। देवताओं को स्थूल ताज ही दिखाते हैं, या मस्तक के चारों तरफ लाइट का ताज भी दिखाते हैं, तो डबल ताज हुआ ना। देवताएं हैं डबल ताज वाले, तो जो पूजा करते हैं राजा विक्रमादित्य वगैरह दिखाते हैं, वो डबल ताज वाले हैं या सिंगल ताज वाले? सिंगल ताज वाले। वहां फिर पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले हैं क्या? रामेश्वरम में, गोपेश्वरम में जो पूजा करने वाले हैं, जो चित्र रखे हुए हैं, वो पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले हुए या डबल ताज वाले? कोई को भी नहीं मालूम है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम अपन को भी नहीं दियो। क्या? ऐसा चित्र कि जैसे नीची कुरी के ब्राह्मण अपने गले में दीदी दादी दादाओं के चित्र लटका लेते हैं, लटकाते हैं कि नहीं? देहधारियों के चित्र लटकाते हैं या नहीं लटकाते? ऐसे तुम अपनों को भी स्थूल चित्र पॉकेट में या गले में नहीं दियो। क्या? कि राम का चित्र दे दिया या कृष्ण का चित्र दे दिया, माना ब्रह्मा का चित्र दे दिया, या वर्तमान में पुरुषार्थी शंकर का चित्र दे दिया। किसी बहन ने कहा राजा का भी फोटो दिखलाया है, तो ये जो फोटो दिखलाया है, जिसका ये ज्ञान में पूरी अच्छी रुचि होगी ना, वो इस चित्र को करेक्ट भी कर सकते हैं। ओम शांति।